ओम शांति। प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के घर में पहुंचे, प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित अरावली की सुंदर पहाड़ियों के मध्य में आबू अब्बा के घर में, आपके अपने घर में आप सभी का बहुत बहुत परमधाम से निराकार श्री बाबा, अव्यक्त वतन से मम्मा बाबा और हमारी सभी दादियां दादाएं, मधुबन निवासियों की ओर से आदरणीय शशि दीदी, शिलू दीदी की ओर से, हमारी ओर से आप सभी का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, अभिवादन है। आप सभी यहां विशेष भट्टी करने के लिए आए हैं। आज भी बाबा ने कहा कि बादल भर करके आते और फिर वहां जाकर के बरसते हैं, तो आप सभी भी ज्ञान बादल स्वयं को भरने के लिए आए हैं। ज्ञान सागर से रतन की झोलियां भरने के लिए आए हैं, तो आप सभी खूब खूब अपनी झोली भर करके अपने स्थान पर जाकर के औरों को भी रिफ्रेश करेंगे, ऐसी अंतर मन की शुभ भावना हम सभी के बीच में। हमारे आदरणीय शिलू दीदी जी पधारे हैं, सर्वप्रथम तो एक हाथ की ताली से उनका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। यूं तो आप सभी शिलू दीदी को बहुत अच्छी तरह से पहचानते ही होंगे, लेकिन हाँ, कोई कोई नए होंगे, शायद उनको परिचय नहीं भी होगा, तो मैं शॉर्ट में उनका परिचय देना चाहूंगी। आपने मुंबई में 12 वर्ष के अल्पायु में ये ज्ञान प्राप्त किया और वहां से ही विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1969 में आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया और आपने देश विदेश में अनेक स्थानों पर जाकर के इस ज्ञान की सुवास को फैलाया, बाबा का नाम रोशन किया। डायरेक्ट भगवान से आपको विशेष वरदान मिला है कि आपकी जीवा पर मां सरस्वती विराजमान है और सर्वप्रथम टीवी चैनल की जो सेवा है वो आपसे ही तो आरंभ हुई। शुरू शुरू में तो सभी भाई बहने जी टीवी वाली शिलू बहन ऐसे कह करके पुकारते थे, उनको पहचानते थे। ऐसी विदुषी महान आत्मा हम सभी को आज उपलब्ध है और उन्हीं को ही ये श्रेय जाता है जो अनेक शिविरों और भट्टियों का आयोजन करते हैं। तो आप सभी भी इस भट्टी से बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। ज्यादा ना कहते हुए आपकी आंखों से लग रहा है आप तरस रहे हैं दीदी की वाणी सुनने के लिए, तो इसलिए मैं दीदी को ही विशेष निवेदन करूंगी कि इस भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य हम सभी के सामने स्पष्ट करेंगे आदरणीय शिलू दीदी जी। अगर नीचे बैठने में किसी को तकलीफ ना हो भाइयों में माताओं में, तो आगे आकर के बैठेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पीछे से ज्यादा आगे वालों को लाभ मिलता है, तो इसलिए जो आराम से बैठ सकते हैं वो आगे आकर के बैठिएगा।
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, प्यारे बाप दादा की कर्म भूमि में आप सभी भाई बहने पधारे हैं, तो प्यारे बाप दादा सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से और हमारे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत महान लक्ष्य लेकर के आप मधुबन आए हैं कि हम मधुबन में तपस्या करेंगे। गीत भी इसी प्रकार का भी सुना, हमें तपस्या करनी है, यही लक्ष्य है ना, हमें तपस्या करनी है। क्यों तपस्या करनी है? ताकि इतनी शक्ति हम अपने अंदर भर सके, जो हम जैसे गीता बहने का बाबा ने आज का यहाँ भर के जाएंगे वहां बरसेंगे, परंतु उसके साथ साथ बहुत कुछ करना है। इतनी शक्ति भरेंगे जो स्वयं में इतना परिवर्तन लाएंगे, और परिवर्तन लाकर जिस उद्देश्य को हमने अपने जीवन में अपनाया है कि हमें संपूर्ण बन बाप के घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकेंगे। लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बाबा देते हैं। वो छोटे छोटे लक्ष्य क्या है? सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि घर जाना है तो यहां से हमें उपराम होना है, क्योंकि जहां जाना होता है वहां की याद आती है, और जहां से जाना होता है वहां से दिल हटती जाती है। ये वैसे भी ये नियम है। आप सूरत से आए या जामनगर से आए, गुजरात के किसी भी कोने से आए, आपको पता था कि आज हमें पहुंचना है मधुबन 15 तारीख, तो एक दो दिन पहले से ही आपका मन उपराम हो गया होगा, हमको जाना है, हमको जाना है, जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन से योग लग गया। कोई ने आपसे कहा होगा हम 16 तारीख मिलेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं 16 तारीख को अब नहीं होऊंगा, मैं मधुबन में होऊंगा। तो पहले से ही मधुबन याद रहता है, और जहां से जाते हैं वहां से उपराम होते हैं, क्योंकि तैयारी की है मधुबन जाने की। तो अब हमको बाबा ने बहुत बड़ा उद्देश्य दिया है कि संपन्न बन के घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। उसके लिए क्या क्या बातें बाबा ने हमें बताई जो छोटे छोटे लक्ष्य के रूप में है? तो पहला लक्ष्य है यहां से उपराम होना है, क्योंकि हमें जाना है। पर उपराम होने लिए क्या करना होगा? अंदर में वैराग्य चाहिए। वहां भी से भी आप आए तो कई काम होंगे आपके, भी अभी नहीं, मैं जब वापस आऊंगा ना तब करूंगा, अभी छोड़ो, अभी हमको जाना है, अभी जाना है। तो वहां से जैसे वैराग हो गया, तो सबसे पहला हमें काम यही करना होगा कि इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य होना होगा। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और वैराग्य आने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बाबा कहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। क्योंकि जहां से जाना है तो वहां की बातें क्यों देखना, क्यों सुनना, क्योंकि जाना है, जाना है, जाना है, तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आ ही जाता है। तो इस भट्टी का बहुत बड़ा थीम है, वैराग्य वृत्ति द्वारा संपूर्णता की ओर। आप सबको गले में माला मिल गई है ना, पढ़ा आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है जी? हाँ, तो वैराग्य वृत्ति द्वारा संपूर्णता की ओर, ऐसे ना क्या है। तो वैराग्य वृत्ति बहुत जरूरी है। और मधुबन में आना माना पूरा ही दुनिया से वैराग्य, जिसको बाबा कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया। मनुष्य मर गया तो उसके लिए दुनिया ही मर गई। जब किसको पता है बस अभी मेरी मौत आनी है, तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आ ही जाता है, क्योंकि जाना ही है। तो आप मोए मर गई दुनिया, तो बाकी जो भी लौकिक बातें हैं उनसे बिल्कुल उपराम होना है। हो सकते हैं ना उपराम, हो सकते हैं कि मोबाइल सारा दिन चलता रहेगा, संसार समाचार तो सुनना ही नहीं है, क्या दुनिया में हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, वो तो सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, लेकिन साथ साथ सोचना भी नहीं है। क्योंकि चलो देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, लेकिन सोच तो चलता है, सोचना भी नहीं है। इसलिए सबका मोबाइल स्विच ऑफ होगा, हो सकता है, हो सकता है। जिन्होंने स्विच ऑफ कर ही लिया है हाथ उठाओ। अच्छा, सबने कर लिया पहले से ही। फिर घर वाले फोन करेंगे, आपका मोबाइल स्विच ऑफ आएगा तो बोल दिया पहले से ही घर में, चलो यहाँ पहुंच गए, उसका समाचार तो देंगे ना घर में कि हम पहुंच गए। हाँ, वो तो जरूर देना, नहीं तो उनको ख्याल चलेगा पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्योंकि पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है, कितने क्या क्या होता रहता है, कितनी कितना कितना समाचार आता रहता है। इसीलिए कम से कम घर में समाचार तो जरूर देना, हम मधुबन पहुंच गए हैं, अभी 3 दिन हमको कोई फोन नहीं करे, ये हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है ना, बिल्कुल। तो इसीलिए कोई फोन भी नहीं करेगा और आपका भी ख्याल नहीं जाएगा कि मुझे भी फोन करना है, बस ये पहला काम करना। दूसरा काम ये करना कि जितना हो सके वाचा में नहीं आना है, साइलेंस में रहना है। अगर बहुत जरूरी आपको कुछ कार्य है तो जहां 4 शब्द की बजाय 2 शब्दों में हो सकता है काम, तो 3 शब्द भी नहीं कहने हैं। अगर 2 शब्द के बिना इशारे से ही हो सकता है तो फिर आवाज में आना ही नहीं है, ऐसे भी हो सकता है ना, इशारे में, आवाज में आना ही नहीं है, मौन, केवल मुख का मौन नहीं पर साथ साथ मन का भी मौन, मन भी एकदम शांत। मन का भी मौन होगा तो मुख से शब्द निकलेंगे ही नहीं, मन में बहुत चलता है तो फिर मुख पर भी आता है। इसीलिए मन में भी नहीं आए, क्योंकि मर गए हम इस दुनिया से 3 दिन के लिए, तो यहाँ तो बिल्कुल एक दूसरा ही वातावरण है। इसीलिए पहली बात तो देखते हुए नहीं देखना, दूसरी बात एकदम मन का मौन, फिर तीसरी बात क्या करेंगे, तीसरी बात अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान, अमृत वेले पूरी दिनचर्या पर ध्यान। आपको लास्ट में गीता बहन दिनचर्या पूरी सुनाएगी, उसमें आपको बाबा को पत्र भी लिखना है, क्योंकि जो कुछ दिल की बात है वो सब बाबा को बतानी है, हर संबंध से बाबा को अपना समाचार देना है। तो इसीलिए उसके लिए क्या करना होगा वो आपको बताएंगी गीता बहन। तो दिनचर्या पर पूरा ध्यान, टाइम टेबल आपका इतना एक्यूरेट हो, बाहर लगा दिया, बाहर लगाए, मैंने उसको बोला था बाहर टाइम टेबल लगा दे जी, लगाया तो टाइम टेबल पर पूरा ध्यान देना, पंचुअल रहना है और हर क्लास को भी अटेंड करना है। वैसे तो 3:30 बजे से योग शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए उसका भी ध्यान रखना है। तो पूरा बताएंगे और फिर आपके क्लासेस भी होंगे, साथ साथ तपस्या भी होगी, बिल्कुल बैलेंस्ड प्रोग्राम है। और अगर रात्रि को किसी सूरजबाई का क्लास होगा जनरल में, फिर आप भी बैठेंगे और बाकी सब भी आएंगे। बाकी तो दिन भर आपके लिए ही है ये मेडिटेशन हॉल, अन्य कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होंगे। तो सवेरे तो मुरली के लिए तो जाएंगे जरूर, और बाकी दिन भर आपका यहाँ प्रोग्राम होगा। तो रोज कौन कौन आपके क्लासेस भी कराएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो इसलिए दिनचर्या पर ध्यान, और जैसे ही आपको समय मिले तो बस मैं और बाबा और कोई नहीं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इतनी मन में आ जाए, बस मैं यहाँ से जैसे जाऊं बिल्कुल परिवर्तित होके जाऊं, एकदम परिवर्तन, ताकि जैसे वापस जाऊं तो लोग कहे अरे आप तो भट्टी में पक के आए हो, भट्टी में। तो भट्टी में पकने का मतलब क्या है? अग्नि में कोई पकता है तो उसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। अग्नि में जाना माना परिवर्तन होना। अगर अग्नि में गया और परिवर्तन न हुआ तो अग्नि काय की हुई। परंतु परिवर्तन किस रूप से हो, हर चीज का अलग अलग रूप होता है। तो अगर कोयला डालते हैं आग में तो वो राख बन जाता है, परिवर्तन हुआ वो काले से थोड़ा ग्रेश कलर का हो जाता है, बदल जाता है, रंग बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। कोयला डाला तो फिर सोना डाला तो क्या होता है? खाद निकल जाती है, हल्का हो जाता है, सच्चा सोना हो जाता है। ईंट डाली, मिट्टी की ईंट डाली तो वो क्या हो जाती है? इतनी स्ट्रांग पक्की हो जाती है। सब्जी कोई डालते हैं, टमाटर बैंगन आलू, अगर आग में डालते हैं तो क्या हो जाता है? नरम हो जाते हैं। आलू डालेंगे तो वो खाने योग्य हो जाएगा, बहुत टेस्टी हो जाता है, कच्चा कैसे खाएंगे। बैंगन डालते हैं तो भरता बन जाता है, हाँ बड़ा स्वादिष्ट होता है वैसे बैंगन खाने से। तो इसी प्रकार वो बदल जाता है। तो कोई कठोर चीज है वो नरम बन जाती है, और जो नरम चीज है जैसे ईंट मिट्टी की और वो आग में पड़ी तो एकदम स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, गिरने पर भी टूटती नहीं है अगर वो मजबूत बन गई तो। इसीलिए आत्मा के अंदर भी वो परिवर्तन आ जाए। किसमें परिवर्तन? मन में भी परिवर्तन, बुद्धि में भी परिवर्तन और संस्कारों में भी परिवर्तन। क्योंकि आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार का ही समूह है। तो मन में परिवर्तन आना माना जो पहले हमारे विचार थे वो विचार एकदम पिघल जाए। किस प्रकार के विचार थे? थोड़े अभिमान के विचार थे, रोब के विचार आते थे, हाँ ये वो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं मनुष्य। तो वो मन में जो उसके संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प, कभी थोड़े अशुद्ध संकल्प, वो सब पिघल जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो मन में और बुद्धि, बुद्धि विशाल बन जाए, हद से निकल करके बेहद में चले जाए। और संस्कार जो द्वापर युग से हमारे संस्कार बन हुए हैं, वो सब संस्कार नष्ट हो करके दैवी संस्कार बन जाए। तो ये इतना बड़ा लक्ष्य हमें यहाँ रखना है। तो ये जब हम लक्ष्य रखेंगे तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन आएगा। रोज अपना पोता मेल रात को चेक करना कि आज सारे दिन में मेरे मन की स्थिति कैसी थी, बुद्धि की स्थिति कैसी थी, संस्कार कैसे थे, फिर मन वचन कर्म हमारे कैसे हुए, क्या कोई बोल ऐसे निकले जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, ऐसे कोई शब्द मैंने बोल दिए जो किसी को दुख मिला हो, तो उस पर पूरा अटेंशन। वैसे तो बोलना ही नहीं है, पर समझो बोल भी निकल गया परंतु उसे किसी को दुख पहुंचा तो अवश्य ये कर्म विकर्म बन जाएगा, तो इसीलिए उस पर भी पूरा ध्यान हो। और फिर बाबा कहते हैं तुमको देवता बनना है, देवता बनना है, तो देवता बनना माना सारे दैवी गुण हमारे अंदर हो, सर्व गुण संपन्न बनना है, दो चार गुण संपन्न नहीं बनना है, क्योंकि देवताओं के जो गुण होते हैं वो तो बहुत ऊंचे होते हैं। एक है अनादि गुण, आत्मा के अनादि गुण जो सात मूल गुण बताते हैं, है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये सात मूल गुण आत्मा के अनादि गुण है जो उनके निजी गुण है। लेकिन दैवी गुण कौन से हैं, नीचे लिस्ट लिखी हुई है, देखना हिस्ट्री हॉल के बाहर दैवी गुणों की लिस्ट लिखी हुई है, है ना, 36 गुण बताते हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, गिनते जाओ कितने गुण हैं। तो रोज अपनी चेकिंग करना इसमें से कौन सा गुण मेरे अंदर है, कौन सा गुण मेरे अंदर नहीं है, अगर है तो कितना परसेंटेज में है, और अगर नहीं है तो वो मुझे भरना है। तो इस पर अपने सर्व गुण संपन्न में बन जाऊं। सर्व गुण संपन्न बनने के लिए ये एक विधि है, और दूसरी विधि क्या है सर्व गुण संपन्न बनने के लिए, सबके गुण देखो, किसी का भी अवगुण मत देखो, गुण चोर बनो, हर एक की अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होगा, वो गुण की चोरी कर लो, और परंतु वो चोरी ऐसी चोरी है जो उसका भी कम नहीं होगा और आपको भी मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए सर्व गुण संपन्न बनने की ये दो विधि, अपने ऊपर चेकिंग और दूसरों को भी देखते हैं तो उनका गुण ले लो, विशेषता ले लो। इसीलिए कहते हैं ना, गुण सिखाए नहीं जाते हैं, गुण ग्रहण किए जाते हैं। अब किसी को गुण सिखाओ कि शांति क्या चीज होती है, पर खुद ही शांति में नहीं है तो शांति का गुण क्या सिखाएंगे, क्योंकि ये तो धारण करने की चीज है ना। किसी को क्रोध नहीं करना और खुद ही क्रोध कर रहे हैं, वो कहेंगे आप तो कर ही रहे हैं फिर हमको क्या सिखाएंगे आप, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जीवन में लाने की चीजें हैं। तो इसलिए कहा जाता है गुण सिखाए नहीं जाते हैं, गुण ग्रहण किए जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज कैनॉट बी टॉट बट दे आर कॉट, उनको ग्रहण वो पकड़े जाते हैं, और चोरी किए जाते ना, चोरी तो छिप छिप के करते ना, अगर दिखावा किया तो चोरी थोड़ी हुई, वो तो डाका हुआ। हाँ, डाका क्या होता है ना, वो खुलकर करते हैं, चोरी जो होती है वो छिप छिप कर करते हैं। तो किसके अंदर बहुत अच्छी विशेषता है, मुस्कुराने की विशेषता है। आप कहेंगे देखो ये कितना प्यार से मुस्कुराता है, मैं भी ऐसे मुस्कुराऊं, ये आपने गुण चोरी कर लिया और उसको पता भी नहीं चला और आपका गुण उसको मिला, पर उसका गुण कम नहीं हुआ, उसका तो वही गुण रहा। तो इसीलिए सर्व गुण संपन्न भी बनना है, फिर 16 कला संपूर्ण बनना है। अंतर है दोनों में, सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण में। तो संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है, दोनों में क्या अंतर है। संपन्न बनना एकदम माना फुल, और संपूर्ण बनना माना इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट। आप जैसे चंद्रमा पूर्णमासी पर फुल होता है, माना पूरी उसकी लाइट होती है, जो चांद की लाइट होती है वो पूरी होती है, कार्तिक पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा खास कितनी लाइट होती है चंद्रमा की, वो उसकी पूरी लाइट है, तो उसको कहेंगे फुल संपन्न। फिर संपूर्ण, संपूर्ण माना गोलाकार, वो आकार में भी पूरा गोलाकार है। कई बार एक दिन पहले एक दिन बाद में देखते हैं तो कहते नहीं आज तो पूर्णम नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन जैसे ही पूनम का की शाम आई तो एकदम पूरा फुल हो जाता है। तो संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है, तो गुणों में संपन्न और कलाओं में संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण। तो कलाओं में संपूर्ण माना पवित्रता की कलाएं, आत्मा के अंदर जो पवित्रता की कलाएं हैं वो कलाओं में संपूर्ण, एक भी कला नहीं। इसीलिए चंद्रमा की भी कलाएं बताते हैं, आज अष्टमी आज नवमी या दसवीं, उस अनुसार वो चांद होता है, आज 11 है आज 14 है, आज अमावस्या है तो एकदम है ही नहीं, चांद दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए 16 कला संपूर्ण माना आत्मा की पवित्रता की कलाएं पूर्ण है, पवित्रता में जरा भी खंडन नहीं, जरा भी दाग नहीं। केवल वचन कर्म की पवित्रता नहीं पर संकल्प की भी पवित्रता, और संकल्प की पवित्रता से भी सूक्ष्म है स्वप्न की पवित्रता। क्योंकि चलो अब कहेंगे भाई वचन कर्म में नहीं है, चलो संकल्प में भी नहीं है, पर स्वप्न तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो स्वप्न की भी अपवित्रता आ सकती है, नींद में भी। इसीलिए उसमें भी इतनी पवित्रता हो उसके लिए रात को पूरा बाबा के सिवा और किसी को याद न करे उसी योग की स्थिति में सो जाएं, तो वो निद्रा नहीं होगी लेकिन वो योग निद्रा होगी। जैसे कि नींद करते हुए भी आप योग में हैं, लगेगा ही नहीं कि ये कोई निद्रा है, ये नींद नहीं है लेकिन केवल विश्राम है। आप देखिए संत महात्मा लोग गुरु लोग वो भी तो सोते तो है ना, लेकिन उनके लिए कभी नहीं कहेंगे कि गुरु जी सो गए हैं, क्या कहते हैं गुरु जी विश्राम कर रहे हैं। विश्राम में तो सोता भी होगा लेकिन विश्राम शब्द आता है, विश्राम माना रिलैक्स, तो वो नींद नहीं है। नींद तो जैसे किसी की तमो प्रधान भी हो सकती है, सोएगा यहाँ और सवेरे उठेगा वहां सारा इतना रोल करता हुआ जाएगा, टांगे लड़ाता जाएगा और पता नहीं क्या क्या करने स्वप्न देखेगा, है ना। कई लोग रात को क्या क्या देख करके सोते हैं, और मूवी देखेंगे या मोबाइल देखेंगे, इतने गंदे दृश्य देखेंगे या जो कुछ भी, तो स्वप्न कैसे होंगे, स्वप्न भी तो वैसे ही होंगे। इसीलिए रात के समय और कुछ भी नहीं सोचना है, बस बाबा की याद में रहना है, भले टहलना है, रात्रि का आपका कोई प्रोग्राम नहीं रखा है, ताकि अगर कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम है तो फिर रात को रखते हैं 9:45 से 9:30, नहीं तो नहीं। इसीलिए बिल्कुल साइलेंस में रहना है और रात को विश्राम करना है। तो ये मुख्य रूप से हम इसको अनुभव करें, तो इसीलिए लक्ष्य हमको बहुत ऊंचा मिलना है, क्योंकि हमको संपूर्ण बनना है। और संपूर्ण बनना कैसे, संपूर्ण किसको कहेंगे, बाप समान, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। तो ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने कैसे बने, उनके आगे तो कोई नहीं था, पर शिव बाबा ने जो कहा उसको माना, बस शिव बाबा ने जो आज्ञा दी वो सिर माथे, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, और एक बीज अपने तन मन धन का बाबा ने बोया, और आज देखो उसी एक बीज का परिणाम वट वृक्ष के रूप में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में 140 देशों में फैल चुका है, एक इंटरनेशनल संस्था हो गई है। और लोग तो यही कहते हैं ना, अरे नारियों द्वारा संचालित, तो नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती है, यह अनुभव होता है बाबा के घर में इस विश्वविद्यालय में। तो नारी शक्ति महान है, परंतु नर भी कम नहीं है। उस दिन भी बाबा ने कहा न शक्ति तो है लेकिन साथ में पांडव भी है, तो शक्तियां पांडव के बिना अधूरी है और पांडव शक्तियों के बिना अधूरी है, इसीलिए यहाँ सबको समान रूप में देखते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते तो ब्रह्मा कुमारी शब्द क्यों, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विशुद्ध है, ब्रह्मा कुमार क्यों नहीं, क्योंकि संचालन बहनों द्वारा है, बाकी भाई साथ ही है, ऐसे नहीं भाइयों को कोई महत्व नहीं है, बहुत महत्व है। अभी तो देखो मोहिनी दीदी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए बहनें भी है और भाई भी है, तो भाइयों में पहले निर्वैर भाई थे सेक्रेटरी जनरल, अभी ब्रिजमोहन भाई है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी है, वो सब भाई है, मृत्युंजय भाई, करुणा भाई, डॉक्टर प्रताप, ये फिर सेक्रेटरी जनरल, वो सेक्रेटरी जनरल, और बहने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो देखो हर एक का अपना अपना स्थान है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो दिखाना पड़ता है हमारी कैसे ये मैनेजमेंट चलती है संस्था की, वो सब बताना पड़ता है, तो इसीलिए ये पोस्ट उनको देनी होती है। बाकी अगर उन बहनों और भाइयों से पूछे वो कहते हम तो बाबा की सेवा में, वो क्या कहते हैं, हाँ बाबा की सेवा कर रहे हैं बस, ऐसे नहीं पोस्ट या पद का अभिमान है, पद का अभिमान या नहीं है, और ऐसे भी नहीं है कि 60 वर्ष की आयु हुई तो रिटायरमेंट है रिटायरमेंट भी नहीं है, जब तक शरीर है तब तक वो पोस्ट है, तो इसीलिए रिटायरमेंट की तो यहाँ बात ही नहीं है कि रिटायर हो गई और वो पोस्ट उसकी खत्म हो गई, वैसा भी नहीं है, तो इसीलिए ये तो ईश्वरीय कार्य है और इस ईश्वरीय कार्य में हम सब सहयोगी है, सबकी उंगली है ना, गोवर्धन पर्वत हम सबको साथ में उठाना है, तभी तो ये कलयुग का पहाड़ उठ जाएगा और सतयुगी पहाड़ आएगा। तो बहुत ऊंचा उद्देश्य मिलता है कि हमें बाप समान बनना है, तो बाप समान बनने के लिए हर वक्त क्या हमें ध्यान पर रखना होगा कि कोई भी कर्म करो, कोई भी शब्द बोलो, कुछ भी सोचो, उस समय ये मन में आए ये बाप समान है क्या, बाबा अगर होते तो ये ऐसे सोचते, बाबा अगर होते तो ऐसे बोलते, बाबा अगर होते तो ऐसे करते, अगर नहीं तो हमें भी नहीं करना है, हमें भी नहीं करना है कि बाबा नहीं करते, क्योंकि बाप समान बनना है, तो जिनके समान बनना है उनके पद चिन्हों पर चलना है, फुटस्टेप्स पर चलना है, तो कैसे चलेंगे जब जो वो करते वो हमको करना है, फिर हमको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई ऐसा था नहीं जिनको देख करके ब्रह्मा बाबा फॉलो करे, उन्होंने तो बस शिव बाबा ने जो कहा वो बिना सोचे किया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, फिर हम क्या सोचेंगे, ब्रह्मा बाबा को सामने लाएंगे। दादियों ने ब्रह्मा बाबा को देखा, फिर दादियों को हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों को अब देखेंगे, हाँ देख रहे हैं, तो ऐसे ही ये कार्य आगे बढ़ता है, और फिर हम बाप समान बनते हैं, तो उससे फिर उसके बाद फिर क्या बनते हैं, फरिश्ता बनते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता किसको कहा जाता है, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, तो फर्श से कोई रिश्ता नहीं माना हद की बातों से उपराम, तो हद की बातों से उपराम कैसे होंगे, जब हम बिल्कुल जो स्थूल बातें हैं उनसे न्यारे हो जाए, तो स्थूल बातों से न्यारे कैसे बनेंगे, जब हम देही अभिमानी बनेंगे, ऐसे नहीं बाहर से कोई स्थूल बातों से कटना है, पर देही अभिमानी बनना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बाबा कहते ना छोड़ो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है, छोड़ना भी नहीं है और फंसना भी नहीं है, गिरना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ना है। तो छोड़ना भी नहीं है, परिवार में भी रहना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, लेकिन बुद्धि से बेहद का वैराग्य भी लाना है, जिसके लिए बाबा कहते हैं मैं और मेरापन से न्यारा। क्योंकि विकर्म कराने के ये दो ही गेट है, मैं और मेरा, और जैसे मैं मेरा कहा, अभिमान आएगा, मोह आएगा, लोभ आएगा, क्रोध आएगा, काम आएगा, ये सारे विकार आएंगे, ईर्ष्या द्वेष सब आया, मैं और मेरा का। इसीलिए बाबा कहते क्या कहो, मैं की बजाय मैं आत्मा, आत्मा कहा तो न्यारी बन सकते, मैं दे अभिमान वश का तो फंसेंगे। आत्मा को तो एक सेकंड लगता है न्यारा होने में, देर थोड़ी लगती है, कितनी देर, एक सेकंड में न्यारी हो जाती है शरीर से, जब किसकी मृत्यु होती है लास्ट घड़ी तक इतनी मनोतर्पण हो, दर्द हो, पर जैसे आत्मा निकली एकदम शांत। कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कैसे होता है, देखा है आप लोगों ने कोई शरीर छोड़ते हुए, जिन्होंने देखा है हाथ उठाए, क्योंकि सब, अच्छा सबने देखा है, आपके सामने ही मृत्यु हुई है, जिन्होंने नहीं देखा ऐसे सामने से किसी की उसी से मृत्यु हुई, आत्मा चली गई, वो हाथ उठा जिन्होंने नहीं देखा है, अच्छा नहीं देखा है, परंतु जिन्होंने देखा है उनका तो सुना होगा, अचानक बात कर रहा है, अभी खाना खाया, अभी टहल रहा है, अचानक ओम शांति, ओम शांति, निकल गई आत्मा, एक सेकंड की बात है, देर थोड़ी लगती है, कैसे निकली कहाँ से निकली कुछ पता नहीं, आत्मा दिखाई थोड़ी देती है आंखों से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर पहले से ही वो उपराम स्थिति है तो ऑटोमेटिकली हम फरिश्ता बन सकते हैं सहज रूप से। तो केवल फर्श से रिश्ता नहीं, परंतु हमें फंसना भी नहीं है, तो छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, और नया जोड़ना भी नहीं है, कुछ नया भी नहीं जोड़ना है। अभी नई बिजनेस चालू करूं, मैं ये करूं वो करूं, बाबा कहते हैं अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, नया बिजनेस शुरू करूं, आता है ना कईयों का, अभी थोड़ा पैसा है नया बिजनेस ये शुरू करूं, अब नया क्या शुरू किया वो सारा घाटा पड़ गया, कई काम से खत्म, घाटा पड़ गया, दिवाला मार दिया, फिर कहते अरे काहे को मैंने शुरू किया, ऐसा ही ठीक था। तो सब में हाथ पांव लगाना या उसके अंदर जाना जरूरत ही नहीं है, जितना हो सके उसको धीरे धीरे वाइंड अप ही करना है, क्योंकि जाना है घर, जाना है घर, जाना है। तो इसीलिए नया जोड़ना भी नहीं, तो न फंसना है न छोड़ना है, जो है उसको निभाना है, निभाना भी है, क्योंकि हिसाब किताब तो मेरा ही है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, और कोई थोड़ी उसका उस हिसाब किताब को पूरा करेगा, मुझे ही करना है। पर भागना भी नहीं है, भाग के चले जाना है वो भी नहीं करना है, हर परिस्थिति का सामना भी करना है, सहन भी करना है, हिसाब किताब चुकतू भी करना है, इसलिए निभाना भी है। इसलिए बाबा ने ये मध्य मार्ग हमें दिया है, क्योंकि दुनिया में दो एक्सट्रीम एंड्स है, एक तरफ है तो बिल्कुल इतने भौतिकवादी जो बात मत पूछो, सारा टाइम विकारों में फंसे हुए इतने भौतिकवादी, और दूसरी तरफ है एकदम सन्यासी, अलख निरंजन, नागिलों कैसे होते हैं अलख निरंजन, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा कहते ऐसे भी नहीं, मर्यादा में चलना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन रही है, देवताएं देखो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसीलिए दोनों एक्सट्रीम एंड्स नहीं, तो इसलिए कहते हैं मध्य मार्ग है ये, ज्ञान मार्ग मध्य मार्ग है, ये भक्ति मार्ग भी नहीं है, ये संन्यास मार्ग नहीं है, ये कोई भौतिक रूप से भी मार्ग नहीं है। कई लोग कहते हैं ना आप लोग तो सन्यासी हो, हम कहते हैं कहाँ हम सन्यासी है, हम तो अपने परिवार में रहते, सन्यासी थोड़ी है। तो फिर कहेंगे आप लोगों ने सफेद वस्त्र पहने हैं, हमने कहा ये अच्छा लगता है, इसमें क्या है, सफेद वस्त्र दुनिया में लोग नहीं पहनते हैं क्या? बहुत पहनते हैं, गर्मियों में तो वैसे भी सफेद अच्छा लगता है, लेकिन हम अंदर में क्या सोचते हैं, हाँ सफेद वस्त्र पहना माना अमर गए अंदर में हम तो यही सोचते ना, आप हुए मर गई दुनिया। इसीलिए निभाना भी जरूर है, पर कैसे निभाते हैं, खुशी खुशी, जिसको बाबा कई बार कहते हैं छोड़ो तो छूटो, इतना भी नहीं पकड़ के रखना है कि हम छोड़ नहीं सकते, भूलना है, छोड़ना माना या भूलना, भूलना बहुत जरूरी है। अगर भूलेंगे नहीं माना, जैसे अंदर पकड़ के रखा है, हम तो उड़ता पंछी, आत्मा को क्या कहा जाता है, पंछी, आत्म पंछी कहते हैं ना, तो पंछी क्या होता है, उसका तो आशियाना कौन सा है, आकाश, अगर उसको पिंजरे में रख दिया वो खुश थोड़ी होता है, क्योंकि उसका संस्कार तो उड़ने का है, तो अगर उड़ते हुए पंछी को पकड़ के पिंजरे में डाल दिया, बेचारे को फंसा दिया, आजकल तो सरकार भी यही कहते हैं पिंजरे में मत रखो पक्षियों को। एक बार यहाँ ना किसी ने मोर पाला था, एकदम म्युनिसिपैलिटी आई और कहा मोर को पाल नहीं सकते हो, तो उसने कहा मोर को अगर नहीं पालेंगे तो यहाँ तो जंगली जानवर खा जाएंगे, लेकिन मोर को हम कैद में नहीं रख सकते, क्योंकि मोर हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते उसका बहुत सम्मान है, परंतु हम उसको पिंजरे में नहीं रख सकते हैं। चलो और पक्षियों को रखते हैं तो और कोई बात नहीं, लेकिन मोर को बिल्कुल नहीं रख सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा भी उड़ता पंछी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो एक सेकेंड में आत्मा न्यारी भी बन सकती है। तो इसीलिए न्यारा और प्यारा से शुरू करते हैं, लेट गो, फिर बाबा को सौंप दो, लेट गॉड, बाबा ये बोझ आप संभालो, मन से दे दो, बाकी ऐसे नहीं ये बच्चे मेरे बाबा आप रखो या मधुबन में, ऐसे नहीं, वो तो आपको ही संभालना है, आपने रचना रची है तो कौन पालेगा, जिसने रचना रची है वही पालेगा ना। देखो ब्रह्मा को रचयिता कहते हैं, फिर वही विष्णु बनता है, तो विष्णु को क्या कहते हैं, पालनहार, तो पालनहार ही पहले रचयिता है, फिर रचयिता ही फिर पालनहार बनता है। हाँ दूसरे को बच्चा सौंप दो, कहेगा मैं क्यों तुम्हारा बच्चा संभालू, तुमने पैदा किया है तुम ही संभालो हाँ तुमने पैदा किया ना, नहीं संभाल सकते तो पैदा ही क्यों किया, कई ऐसे कहते हैं दुनिया में तो बहुत है। इसीलिए जो रचयिता होता है वही पालनहार भी होता है, पर वो विनाश नहीं कर सकता है, वो मार नहीं सकता है। माँ कहे मैंने ही बच्चे को पैदा किया, मैं इसको मार डालूं, क्योंकि मैंने ही पैदा किया, क्यों मेरे ऊपर दोष आएगा, मैंने मार डाला, पर मैंने ही तो पैदा किया, तो मैं मार भी सकती हूँ, लेकिन नहीं, मार नहीं सकती है, मारने वाले को तो हत्यारा कहा जाएगा, भले पैदा उसी ने किया हो लेकिन हत्यारा कहलाएगा। इसलिए बाबा कहते ब्रह्मा सो विष्णु, शंकर का तो कोई पार्टी नहीं, ये तो ड्रामा अनुसार ही विनाश होता है, शिव बाबा थोड़ी करते हैं, भाई शिव बाबा प्रेरणा देते नहीं, ये ड्रामा अनुसार है, इसमें ड्रामा, अभी ड्रामा को क्या दोष देंगे, कोई मनुष्य थोड़ी है कि उनको दोष देंगे कि तुम विनाश करते हो, दोष बेचारे शंकर को दे दिया, और शंकर को तो तपस्वी रूप दिखाया है, तो तपस्वी रूप का मतलब क्या है, कि हमारे तपस्या के बल से वो विनाश भी तैयार होता है। इसीलिए बाबा कहते रुद्र यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, तो ये ज्ञान योग का ये यज्ञ है, इस यज्ञ में हम संपूर्णता को जैसे प्राप्त करते जाते हैं, विनाश की ज्वाला फैलती जाती है, देख रहे हैं ना कैसे फैल रहे, कैसे धमका रहे एक दो को, लेकिन क्यों नहीं अटैक कर रहे, क्यों नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है, और जैसे ही बच्चे तैयार हो गए तो पर्दा खुल जाएगा, लेकिन बच्चे तैयार ही नहीं हुए, कई कहते हैं अच्छा अब तैयार नहीं है ताकि विनाश ना हो ऐसे भी है कई कहने वाले। बाबा कई बार पूछते हैं जो घर चलने लिए तैयार है वो हाथ उठाओ, हाँ तो भाई क्या उठाएंगे हाथ, घर चलने लिए तैयार हो, है तैयार कि नहीं है, सभी तैयार है, देखो डर रहे हैं, पता नहीं हाथ उठाए या नहीं उठाए, तैयार भी हैं बाबा जो आप करो। लेकिन फिर ये भी है, बाबा पूछ कहते हैं कि बच्चे संपूर्ण बने हो, संपूर्ण तो बने नहीं है, तो तैयार है पर संपूर्ण नहीं बने, इसीलिए वो रुका हुआ है सब कुछ। नहीं तो कहते भाई 2025 आ गया अभी तक विनाश नहीं हो रहा, लोग तो कहते रहते बस 2025 में सब रोज डेट देते रहते, 30 अगस्त 30 मार्च तक ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, अप्रैल भी आ गया विनाश होगा इस साल, पर देख तो रहे ना आसार तो देखो पूरे हैं, रोज कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है, रोज कहीं ना कहीं कोई कुछ हो रहा है, सब प्रकार की उथल पुथल है चारों ओर, सब टेंशन में है सारी दुनिया, छोटे बच्चे भी, कलयुग का अंत है। लेकिन बाबा के बच्चे जितने ऊंचे उठते हैं, फरिश्ता बनते जाते हैं, तभी तो हम साक्षात्कार कराएंगे, हमारे द्वारा ही साक्षात्कार होगा, आत्माओं को आत्मा पुकार रही है, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है, वो पुकार सुनाई नहीं दे रही है क्या आत्माओं की, कितना पुकार रहे हैं, बहुत दुखी है आत्माएं। तो इसीलिए फरिश्ता बनना है, फिर घर जाना है, फिर बिंदु बन जाना है, बस आत्मा बिंदु का दुनिया में ब्रह्म तत्व को इतना बड़ा चढ़ा कहते भगवान, वो ब्रह्म तत्व बाबा कहते मैं तो एक बिंदु हूं, तुम भी बिंदु हो, सूक्ष्म हो जाओ, सूक्ष्म हो जाओ, सूक्ष्म। तो जितना जितना हम आत्मा बन के सूक्ष्म होते जाते हैं, उतने हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती जाती है। और फिर तो देखो घर जाना है, और घर जाने के लिए तो शुद्धि चाहिए, वैसे भी चाहिए बाबा कहते हैं, तो एक है योग बल, दूसरा है सजा बल। शुद्ध होने के दो ही रास्ते हैं, कौन से रास्ते, एक है योग बल और दूसरा है सजा बल। अगर योग बल नहीं है तो सजा बल से जरूर पावन बनेंगे, धर्मराज की सजाएं खाएंगे। तो धर्मराज की सजाएं न खाएं और योग बल से ही हम पावन बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं, और बिना सजा खाए बाबा के साथ घर जाएं, ये लक्ष्य बहुत, ये उद्देश्य है हमारा। और फिर सतयुग में आए, उसी रॉयल्टी से आए, सम्मान के साथ आए, और वो ऊंच पद पाए अपने पुरुषार्थ के अनुसार। बस ये बुद्धि में अगर लक्ष्य है बराबर, ये हमारा उद्देश्य बुद्धि में पक्का है, तो ऑटोमेटिकली बाबा जो कहते हैं उस पर हम चलते हैं। इसीलिए न अलबेलापन चाहिए, न आलस्य चाहिए, न ही किसी प्रकार का कोई भी विघ्न चाहिए। विघ्न विनाशक भी बनना है, विघ्न को कैसे विनाश करेंगे, उपराम बन करके। जितना योग युक्त होंगे हमारे विघ्न ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे। बाबा कहते एक चुप सौ सुख, विघ्न आने का कारण हमारे बोल है। हम कहते हैं दुनिया में आधे झगड़े जो होते ना परिवारों में झगड़े, वो झगड़ों का आधा कारण क्या है, हमारे बोल। तुमने ऐसे क्यों बोला, पर तुमने भी तो बोला, फिर तुमने क्यों बोला, हाँ ये बोला बोला बोला। तो एक वो पहले बीच में कोई वायरस आया था, इबोला वायरस, तो उसका जोक बना दिया, ये तुमने बोला, उसने बोला, बोला बोला बोला, इबोला हो गया वायरस आ गया। तो ये वायरस से चारों ओर फैलता है, तो जैसे कोरोना फैला ना वैसे ये वायरस फैल जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते इस वायरस से दूर रहो, क्योंकि ये वायरस फिर सारी दुनिया में फैलता जा रहा है, घर घर में झगड़े लड़ाई मारा मारी खून रेजी न जाने क्या क्या संसार में हो रहा है। इसलिए ये सब रावण का समाचार है, उसको सुनने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, तीनों ही नहीं पर उसके लिए थिंक नो ईविल, डू नो ईविल, बस ये अगर करेंगे तो तो आत्मा जरूर संपन्न संपूर्ण बनेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, अभी सवेरे से तो क्लासेस होंगे ही, लेकिन अभी हमारे बीच सतीश भाई, हल्दर भाई और निरंजन भाई तीनों ही हैं। सतीश भाई को तो सभी जानते हैं ना, मधुरवाणी ग्रुप। आज ही वो आए हैं, बेंगलोर गए थे, आज ही पहुंचे। बोला मैं शाम तक जरूर पहुंचूंगा। हाँ, सतीश भाई के लिए खास ताली बजाएंगे। और हमारे हल्दर भाई और वो हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल में वहाँ ये उसमें जो ऑपरेशन थिएटर में आप सेवा करते हैं, और साथ साथ निरंजन भाई। कहाँ है निरंजन भाई? निरंजन भाई की क्या ड्यूटी है? आपकी क्या ड्यूटी है हॉस्पिटल? हाँ, किचन डिपार्टमेंट। हाँ, बहुत अच्छे गायक हैं सभी। अभी बहुत अच्छा आपका स्वागत करेंगे। हमारे साथ दो विशेष बड़े ग्रुप हैं, एक तो जामनगर का ग्रुप है। जामनगर वाले सब हाथ उठाएं। अच्छा, हमारी सुषमा बहन, कहाँ है सुषमा बहन? अच्छा, दूसरा सूरत वाले, मंजूरा गेट, हमारी सोनल बहन आई है। सोनल बहन कहाँ गई? अच्छा, मंजूरा गेट सोनल बहन के कनेक्शन के आए, हाथ उठाएं। अच्छा, इसमें ऐसे भी हैं जो बस एक साल से ज्ञान में है और आए हैं भट्टी में, केवल एक साल के हैं पुराने। अच्छा, जो 10 साल से कम है वो हाथ उठाएं ज्ञान में। 10 साल से कम मना 1 से 10 तक। अच्छा, जो 10 से ऊपर है, हाँ बहुत है, 10 से 20 तक, जो 10 से 20 तक है वो हाथ उठाएं। अच्छा, 20 से ऊपर, अच्छा 30 से ऊपर, वो भी है कोई? अच्छा, वेरी गुड भाई। जो 30 से ऊपर है तो बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बिकॉज इट कैन मोल्ड। और जो 1 साल के भी हैं या 2 साल के भी हैं तो बाबा उनको कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, इसीलिए सबको आगे बढ़ना है और लक्ष्य तक पहुंचना है। ओम शांति। तो बहुत सुंदर गीत आपके सम्मुख रखेंगे। माइक दे दो। मधुबन में भट्टी का भाग्य। गीता बहन है, गीता, हाँ सुषमा बहन, तो उनका भी नाम है। अच्छा अच्छा भाई, सुषमा बहन यहाँ आ जाओ और गीता बहन आप यहाँ।
ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।
सेवा सीजन की शुरुआत और मधुबन में बहुत दिनों के बाद जामनगर और सूरत एक साथ भट्टी करने आया है, तो आज खुशियों की मिली है सौगात। आप जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत करें।
मधुबन मौन भट्टी में आकर करनी है ऐसी तपस्या, पूर्ण करनी है अब तो भक्तों की अभिलाषा। कर दिखाने आया देखो कौन, कर दिखाने आया देखो, सूरत जाम नगर है साथ। पांडव भवन में तप करने आया प्यारा ये गुजरा। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर भाई साहब ने लिखा है शब्द। मधुबन में भट्ट
भक्ति का भाग खुशियों की पाए सौगा। मधुबन में भट्टी का भाग खुशियों की पाए सौगा। पांडव भवन में तप करने आया प्यारा गुजरात। सेवा की जन की शुरुआत सूरत जामनगर है साथ। सेवा की जन की शुरुआत सूरत जामनगर है साथ। महातीर्थ पर आने का अवसर गिर ले ही पाते। चारों धाम की यात्रा करके जन्म सफल हो जाते। महातीर्थ पर आने का अवसर गिर ले ही पाते। चारों धाम की यात्रा करके जन्म सफल हो जाते। वाह बाबा वाह भाग्य मेरे भूल जाते दिन रात। पांडव भवन में तप करने आया प्यारा गुजरात। योग का प्रयोग करें अंतर्मुखी हो जाए। खुद से प्यार के पर बाबा की यादों में खो जाए। चलो योग का प्रयोग करें अंतर्मुखी हो जाए। खुद से बातें कर बाबा की यादों में खो जाए। मन का मुख का मोबाइल का तीनों मौन हो सा। पांडव भवन में तप करने आया प्यारा गुजरात।
और इस वर्ष का थीम है बेहद का वैराग्य अंतिम पुरुषार्थ।
बेहद की वैराग्य वृत्ति है जीवन में लाना। यही अंतिम पुरुषार्थ कर हंसते हंसते घर जाना। बेहद की वैराग्य वृत्ति है जीवन में लाना। यही अंतिम पुरुषार्थ कर हंसते हंसते घर जाना। बाबा दादी बुला रहे सब सुन ले इनकी बात। मधुबन में भट्टी का भाग खुशियों की पाए सौगा। पांडव भवन में तप करने आया प्यारा गुजरात। सेवा की जन की शुरुआत सूरत जामनगर है सा। सेवा की जन की शुरुआत सूरत जामनगर है सा। पांडव भवन में तप करने आया प्यारा गुजरात। सेवा की जन की शुरुआत सूरत जामनगर है सा। सेवा की जन की शुरुआत सूरत जामनगर है सा। सूरत जामनगर है सा। सूरत जामनगर है सा। सूरत जामनगर है सा।